ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के लोगों की आकांक्षाओं से संचालित भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र अभूतपूर्व कायाकल्प के दौर से गुजर रहा है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 दिन के भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के ऑटो उद्योग में पिछले वर्ष 12% की वार्षिक वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल की शक्ति से देश के ऑटो उद्योग की वृद्धि को समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हरित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन ईंधन और जैव ईंधनों के विकास पर भी ध्यान दे रहा है। देश इस समय मोबिलिटी क्षेत्र में भविष्य को दिशा देने के लिए प्रत्येक निवेशक के लिए उत्कृष्ट गंतव्य स्थल बन गया है। भारत में पिछले कुछ वर्ष में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तीव्र वृद्धि पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 640 गुना बढ़ गई है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो ऑटोमोबाइल और संबंधित व्यापार में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत तिपहियों और ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा विनिर्माता बन गया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि ग्लोबल एक्सपो भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में नवीनतम प्रगति को दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत को ऑटो क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण के जरिए घरों के अधिकार का एक रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ये संपत्ति मुद्रीकरण में भी सुविधा प्रदान करेगी। ये योजना संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा करके बैंक ऋण के जरिए संस्थागत ऋण की सुविधा देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक्स में 2 पदक विजेता मनु भाकर, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि बेंगलुरु में अमेरिका का नया वाणिज्य दूतावास भारत और अमेरिका के संबंधों को प्रगाढ़ करने और विस्तार के लिए आवश्यक है। आज बेंगलुरु में नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों में खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष क्षेत्र, रक्षा, ड्रोन और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा है कि भारत दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश बन गया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में डिजिटल भारत निधि पोषित 4G मोबाइल साइट्स पर संचार साथी मोबाइल ऐप, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और इंट्रासेल के रोमिंग का शुभारंभ किया। श्री सिंधिया ने दूरसंचार की क्रांतिकारी शक्ति पर बल देते हुए कहा कि यह क्षेत्र अब देश के विकास को संचालित करने वाला क्षेत्र बन गया है। संचार साथी पोर्टल की सहायता से चोरी हुए 25 लाख फोन में से अब तक 15 लाख का पता लगा लिया गया है। उन्होंने कहा कि यूपीआई के जरिए देश में पिछले वर्ष लगभग 247 लाख करोड़ रुपए के करीब 172 अरब लेन देन हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो जाएगी। आज आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी समेत कई निर्दलीय और छोटे दलों के उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। सोमवार को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का संकल्प पत्र पार्ट 1 जारी किया। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से विद्यार्थियों को मेट्रो किराए में 50% की छूट देने की मांग की है। मुंबई पुलिस ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। अभिनेता पर हमले के 24 घंटे बाद ये कार्रवाई की गई। खो खो विश्व कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में आज भारतीय पुरुष और महिला दोनों ही टीमें मैदान में उतरेंगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।